ओम शांति।
अभी के सत्र में दिव्यता की खुशबू फैलाने हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगी सुशील भाई जी। एक हाथ हिलाकर भाई जी का स्वागत सत्कार अभिनंदन करते हैं। आप हिमाचल की धरनी देवभूमि से निकले ईश्वर के अनमोल रत्न हैं। लौकिक में आप अमृतसर स्थित सोनी कंपनी में एज ए इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन जॉब कर रहे थे। 1995 में आपको ये ईश्वरीय ज्ञान मिला और 1999 में आपने अपना जीवन मधुबन धरनी में समर्पित किया। आप मधुबन में मुख्य रूप से सोशल विंग, मीडिया, पब्लिक रिलेशन, साइट सीइंग ऑफिस में सेवाएं देते हैं। इसके साथ मधुबन स्वपुरुषार्थी ग्रुप के आप एक्टिव मेंबर हैं। यहाँ जो रात्रि क्लास चलती है उसमें भी आप क्लासेस कराते हैं और साथ साथ अमृत वेले के पश्चात जो डॉक्टर सचिन भाई के ग्रुप है उसमें भी आप क्लासेस करवाते हैं। तो आज खास स्लोगन में बाबा ने कहा है, याद है, शक्तिशाली आत्मा वह है जो जब चाहे शीतल स्वरूप और जब चाहे ज्वाला स्वरूप धारण कर ले। तो इसी विषय पर शीतल और ज्वाला स्वरूप का बैलेंस कैसे रखे, इस पर प्रकाश डालेंगे आदरणीय सुशील भाई जी। तो सुनते हैं भाई जी से।
ओम शांति। आप सभी बाबा के नैनों के नूर, सिर के ताज, इस सर्व की मनोकामना को पूर्ण करने वाले ऐसे अनन्य रतन मधुबन बाबा के घर से आप अपने घर में पहुंचे हैं, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हम सबका ये परम सौभाग्य है जो हमें आज के परिदृश्य में भी थोड़ा समय साधना के लिए मिल जाता है। संसार में जितनी हलचल है, जितनी चकाचौंध है, आकर्षण है, इतनी जिम्मेवारियां हैं, उनसे भी थोड़ा सा टाइम निकालकर बाबा के घर में पहुंच जाते हैं। तो ये हम सबके पुण्य कर्मों का बल है और बाबा का वरदानी हाथ है जो हमें साधना करने के लिए ऐसी भट्टी में अवसर मिलता है। साधना तो घरों में भी की जाती है, सेंटर में भी करते हैं, लेकिन एक है भगवान के आंचल में बैठकर साधना करना, संगठित रूप से ऐसे स्थान पर पहुंचना जहां सृष्टि के आदि पिता ने, यज्ञ के आधार स्तंभों ने, दादियों ने अनवरत रूप से साधना की है और निरंतर यहां साधना चलती भी रहती है। ऐसे स्थान पर साधना करने का मौका मिलना बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो बेहद का घर बाबा का, बेहद का मधुबन, ये तपस्या भूमि है। इस स्थान पर निरंतर तपस्या चलती ही रहती है, निरंतर योग की ज्वाला प्रज्वलित रहती है। इसलिए यहां आने का सभी का मन बार बार होता है। पांडव वन में अगर नहीं आए तो जीवन में अधूरा अधूरा लगता है। तो ये पांडवन बेहद का महायज्ञ है जहां कदम पड़ते ही हम पुरानी दुनिया से, पुरानी देह की स्मृतियों से परे चले जाते हैं। एक निर्वाण धाम की अवस्था का जो गहरा अनुभव होता है, अगर इस स्थान की हम स्मृति भी रखते हैं तो भी हमारी स्थिति शक्तिशाली बनती है। लेकिन स्थान के महत्व का पूरा पता होगा तो ही उसका गहरा अनुभव होता है। तो इस बेहद के मधुबन में हम यहाँ बैठे हैं, तो हर एक की याद की यात्रा तो ज्वाला स्वरूप होगी ही। आप सभी शीतला देवियां हैं ही, ज्वाला देवियां हैं ही। ज्वाला स्वरूप का अर्थ है कि निरंतर हमारी याद की यात्रा कंटिन्यूटी बनी रहे, शक्तिशाली संकल्पों के साथ जो हम बाबा के साथ अपना बुद्धि योग जोड़ते हैं उसी को ही ज्वाला स्वरूप कहा जाएगा। एक है सामान्य रूप से हम संकल्प करते हैं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, लेकिन उन संकल्पों में बल बढ़ जाए, ताकत बढ़ जाए, शक्ति बढ़ जाए। एक है हम रोटी खाते हैं, दूसरा उस रोटी के ऊपर थोड़ा घी लगा दिया जाए तो थोड़ा ताकत अनुभव होती है ना। तो ऐसे ही जो बाबा के रत्न हैं, ज्ञान है, सोमान है, उन सोमान में ताकत बढ़ जाए, वो सोमान केवल शब्दों तक सीमित ना रहे, वो हमारे अपने संस्कारों में समा जाए, वो हमारा स्वरूप बन जाए, हमको सोमान स्मृति में लाने की आवश्यकता ना पड़े। जैसे सामान्य दिनचर्या में जो भी हम कर्म करते हैं सवेरे से लेकर रात्रि तक, उसके लिए संकल्प करना पड़ता है, नेचुरल हो गया है ना, तो ब्राह्मण जीवन में भी सोमान, समर्थ स्मृतियों का सोमान नेचुरल नेचर बन जाए, क्योंकि समय कम है, काम अभी भी बहुत बाकी है। बाबा कहते हैं टू लेट का बोर्ड तो लग चुका हुआ है, तो इस थोड़े से समय में हमें स्वयं को इतना परिपक्व बनाना है, इतना सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है, ताकि आने वाले समय में जो भी विकराल परिस्थितियां आएंगी उनका सामना करने के लिए हमको, हम स्वयं उसमें असमंजस में ना पड़े कि अभी मैं कौन से सुमान का अभ्यास करूं, बाबा ने इस परिस्थिति को पार करने के लिए कौन सा ज्ञान दिया था, या कभी किसी को फोन करूं या दीदी से पूछूं। उसके लिए बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए, क्योंकि बाबा ने हम सबको जन्मते ही सब कुछ दे दिया है, ज्ञान, गुण, शक्तियां, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बाबा ने अपने पास रखी है। आज भी मुरली में था ना, बाप तुम्हें आप समान बनाकर ले जाते हैं, आप समान क्या, ज्ञान का सागर। तो ज्वालामुखी योग के लिए हमें मुख्य रूप से सात बातों पर हम चिंतन करेंगे, ताकि निरंतर हमारी याद की अवस्था जो है वो हर समय ऊंची स्टेज में स्थित हम स्वयं को अनुभव करें। ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां नहीं आती, परिस्थितियां तो आती हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको परिस्थितियां नहीं आती हैं। ब्रह्मा बाबा से लेकर देखें, यज्ञ के आदि काल से लेकर अंत तक कोई भी ऐसी आत्मा नहीं है जो परिस्थितियों से अशुद्धि हो, हर एक को परिस्थितियों से पार करना ही पड़ेगा, लेकिन एक है उसको हंस हंस के पार करना, एक है रो रो के पार करना, पार तो करना ही पड़ेगा, तो क्यों ना हम हंस हंस के पार करें। और हंस हंस के पार करने के लिए हमारे पास वो शक्ति है, रोना उसको पड़ता है जिसके पास शक्ति नहीं होती है। बच्चा स्कूल में वही फेल होता है जिसको मेथड का पता नहीं होता है, जिसको मेथड का पता चल गया है कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वो पार कर लेता है। तो बाबा ने हम सबको हर परिस्थिति को पार करने का मेथड बताया है, शक्ति दी है, ताकत दी है, लेकिन उसका समय पर हमको याद आ जाए, ताकि हम समय पर उस परिस्थिति को पार कर सकेंगे, वो परिस्थिति हमको परिपक्व करे, उस परिस्थिति से हम हार ना खाएं। और उसके लिए बाबा ने हर चीज का नॉलेज हमको दिया है। तो सबसे पहली अग्नि जो हमको हमेशा प्रज्वलित करके रखनी है वो है ज्ञान की अग्नि। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा योग को अग्नि कहा जाता है, ज्ञान को अग्नि नहीं कहा जाता है, लेकिन योग की अग्नि भी प्रज्वलित ज्ञान से ही होती है। जितना ज्ञान स्पष्ट है, क्लियर है, बुद्धि में भरपूर है, योग उतना नेचुरल हो जाता है, सहज हो जाता है। ज्ञान की विस्मृति है, योग भी कम विखंडित होगा, योग में असमंजस बना रहता है, केवल टाइम पास करने जैसा हो जाता है। इसके लिए ज्ञान को क्या कहा जाता है, समझ, लाइट, प्रकाश, रोशनी, हमको हर चीज की अंडरस्टैंडिंग है, समझ है। ये ज्ञान हमें स्वयं को निरंतर प्रफुल्लित कर रखने के लिए मिला है, हर चीज की रोशनी है, जहां रोशनी है वहां अंधकार ठहर नहीं सकता है। तो समझ मिली है हमको हर चीज की, ब्राह्मण जीवन अर्थात मौज का जीवन, खुशियों वाला जीवन। अगर इस जीवन में भी हम उदास रहे, निराश रहे, असमंजस में पड़े रहे, तो शूद्र और ब्राह्मण में क्या फर्क हुआ? तो ब्राह्मणों का चेहरा कैसा होना चाहिए? देवताओं से भी ज्यादा खुशी वाला होना चाहिए। देवताओं तो फिर भी एक रस रहते हैं, वो तो वो प्रारब्ध है, लेकिन प्रारब्ध का तो असली आधार तो अभी है ना। तो ब्राह्मणों का चेहरा कैसा होना चाहिए? हमेशा खुश मिजाज। बाबा कहते तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए? कवारी खुशी। और कितनी खुशी होनी चाहिए? बाबा ने कहा खुशी के मारे तुम्हारी नस फट जानी चाहिए। मुरली सुना कि नहीं सुना है? हाँ, माना अंदर से आग लग जाए एकदम, सिर की चोटी से लेकर पांव के नाखून तक खुशी दौड़ती रहनी चाहिए। और खुशी के लिए बाबा क्या कहते हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं है कोई भी। और एक खुराक तैयार कहां से होती है? ज्ञान से होती है। इस ज्ञान में ही खुशी समाई हुई है। केवल मैं ये सोचूं कि मुझे तो खुश रहना है, लेकिन खुश रहने के स्रोत चाहिए, और वो है ज्ञान। ज्ञान एक संपत्ति की तरह, धन की तरह है। जिसके पास जितना धन होता है उतना उसके चेहरे पर दिखाई देता है। संसार में देखेंगे साहूकार लोग कैसे होते हैं, चेहरे से दिखाई पड़ता है ना कि ये मालदार पार्टी है। तो बाबा क्या कहते हैं, सबसे बड़े ते बड़े ते बड़े साहूकार कौन है? हम बच्चे हैं। इसलिए यज्ञ में 50 पैसे नहीं थे, लेकिन बाबा ने क्या कहा था, पेपर में डलवा दो ब्रह्मा कुमारी इज रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये ज्ञान किसी के पास नहीं है। जो ज्ञान हमको मिला है ये संसार में किसी के पास नहीं है। हमेशा हमको स्मृति रहनी चाहिए, किसी भी आत्मा के पास ये ज्ञान की संपत्ति नहीं है जो हमको मिला हुआ है। अब दूसरी बात है, हमको मिला कौन कौन सा ज्ञान मिला है? एक तो पता चल गया ज्ञान मिला है, लेकिन आगे पता भी होना चाहिए ना क्या ज्ञान मिला हमको। क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में अपने आप को बिजी रखने के लिए बहुत रास्ते हैं। इतना बिजी रह सकते हैं कि व्यर्थ तो दूर से नमस्कार करके चला जाएगा, जो बाबा कहते हैं माया दूर से नमस्कार करके चली जाएगी, लेकिन हमको थोड़ा अपने आप को बिजी रखने की कला आनी चाहिए। अगर बिजी रखने की कला आ गई तो माया आने का मार्जिन ही नहीं है, सारे गेट बंद। चोर गेट बाबा ने कहा ना संडे की मुरली में, कौन से चोर गेट बताए थे? संस्कार, संस्कारों के चोर गेट, कमजोर संस्कार, छोटी छोटी गलतियां, सूक्ष्म कमजोरियां। तो ये संस्कार परिवर्तन कैसे होंगे? ज्ञान से परिवर्तन होंगे। सबसे तो पहले निरंतर ज्ञान सुनने के संस्कार डालने हैं। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, कभी भी डैश मिस नहीं होनी चाहिए, मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। एक है आकर सुनते हैं, सुनने के बाद उसको समाना है, उस पर चिंतन करना है, और इस चिंतन करेंगे तो ज्ञान धारदार तलवार की तरह काम करेगा, जो हमारे कमजोर संस्कारों को काट देगा, वो जो हमारे जो माया के चोर गोट है उनको बंद कर देगा। तो ज्ञान का चिंतन करना है, और चिंतन कैसे करना है? बड़ा आसान काम है। कैसे करना है चिंतन? पहले तो ये सोचना है कि मुझे सारी मुरली याद रहती है, नहीं तो पहले हम संकल्प क्या डाल देते हैं, इतनी मुरलियां सुन ली याद तो रहती नहीं है। पहले हमने अपने अंदर हीन भावना डाल के रख दी है। भगवान कह रहा है कि तुम संसार में सबसे बड़े ते बड़े समझदार हो, और मैं कह रहा हूं नहीं, मैं नहीं हूं, मुझे याद ही नहीं रहता है। भगवान शक्ति दे रहा है लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है संकल्प हमेशा हमको पॉजिटिव रखना है। क्या संकल्प करना है? मुझे सारी मुरली याद रहती है, आज की मुझे सारी मुरली याद है। किसको याद है सारी मुरली? हाथ खड़ा करो। हाँ देखो, थोड़े से याद किया, माना एक्सेप्ट कर लिया ना, स्वीकार कर लिया, तो शक्ति मिल जाएगी उनको। और हाथ नहीं खड़ा किया तो कैसे होगी? माना अभी भी हीन भावना अंदर में भर के रखी है। तो किसको याद है सारी मुरली? हाँ अभी खड़े होके सुनाओ फिर। कम से कम बाबा तो हाथ उठा के खुश तो हो जाता है उस समय भी। अगर भगवान हमारे हाथ उठाने से खुश हो जाए, भगवान खुश हो जाए, कम बात है क्या? तो अपने अंदर हीन भावना नहीं भर के रखनी है। कहीं ना कहीं हमने अपने कोने में हीन भावना करके रखी है, भर के रखी है, तो ये भट्ठी में आए वो हीन भावना छोड़ के जानी है। हमने देखा कई स्थानों पर जाना होता तो कई माताएं ऐसी आदिवासी इलाके की जिनको पढ़ना नहीं आता है, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं पढ़ना आता है, लेकिन मुरली बाबा की लेते तो सारी मुरली पढ़ देती है। कितना भंडर है ये, तो भगवान की कितनी शक्ति मिलती है। तो हमको सारी मुरली याद रहती है। तो आज की मुरली में मीठे बच्चे क्या था, ज्ञान की आग जलानी है। ज्ञान की आग अग्नि जलेगी, योग ज्वालामुखी अपने आप ही हो जाएगा। ज्योति जल रही है उसके अंदर तेल नहीं होगा तो जलेगी वो, तो ज्ञान भी एक तेल की तरह काम करेगा। यह आत्मरूपी ज्योति है, इसके अंदर ज्ञान का तेल डालना है, ग्रित डालना है, तो वो ज्योति प्रज्वलित होती रहेगी। तो आज बाबा ने मीठे बच्चे क्या कहा, हाँ तो तीनों रूपों में याद किया। यही तो करना है भट्ठी में बैठ के, करना क्या और, यही करना है। तो कभी बाप के रूप में, कभी टीचर के रूप में, कभी सतगुरु में। अब याद कैसे करना है, बाप के रूप में या टीचर के रूप में? बाप के रूप में वर्षा याद करेंगे, पढ़ाई और वरदान। तो सतगुरु ने, अच्छा आज सवेरे साढ़े अपना चार सवेरे अमृत वेले सभी आए थे ना, अच्छा तो 4:30 बजे बाबा ने, बाबा की आवाज में क्या थी आज की आवाज, आज सतगुरुवार का दिन है, हाँ बच्चों के लिए बाबा वरदान देते हैं। तो आज की मुरली में सतगुरुवार कहाँ था, तुम्हारे लिए रोज ही सतगुरुवार है। तो ये बुद्धि बिजी होगी इसमें, अब इतना बुद्धि बिजी हो गई तो उसमें दूसरी बातें आने का मार्जिन ही नहीं है, सिंपल चिंतन है। अच्छा सतगुरु को फिर याद करना है, तो या बाप टीचर सतगुरु ठीक है, अभी सतगुरुवार का दिन है आज, तो मैं सतगुरु की संतान मास्टर सतगुरु हूं। अब उसके आगे क्या, उसके आगे क्या, उसके आगे संकल्प चलाने हैं। सतगुरु हमको क्या देता है, वरदान देता है। संसार में गुरु क्या देते हैं, मंत्र देते हैं। यहां बाबा हमको सतगुरु कौन से मंत्र देते हैं, मन मना भव। और वरदान कौन से देते हैं, सदा जीते रहो, ढेर सारे वरदान देते हैं। तो अपने पास वरदानों की माला तैयार करनी है। बाबा हमेशा कहते हैं सोमान की माला हमेशा पहन के रखो। जितना हम यहां सोमान की माला पहन के रखेंगे उतना ही भक्ति मार्ग में वो मन के माला फेरेंगे। 21 सोमान की माला याद करेंगे तो वहां 21 मण के होंगे, 108 की करेंगे तो 108, 1000 की, 8 की करेंगे तो 1008 की होगी। तो 108 सोमान याद करने हैं। सोमान में बहुत बड़ी शक्ति है, सोमान भी एक अग्नि की तरह काम करता है। जैसे बताया ना, एक है सिंपल सोमान, मैं आत्मा हूं, ये सिंपल सोमान है। वो तो संसार वाले भी समझते हैं, आत्मा का ज्ञान है लेकिन उसको अनुभूति नहीं है। हम बच्चों को बाबा ने अनुभूति करने के लिए ताकत दी, शक्ति दी है, समझ दी है। अब मैं आत्मा हूं, उसके साथ में जोड़ना मैं कौन सी आत्मा हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान। जो सोमान हमने सुने ना आज तक, उसके नया कोई सोमान बताओ, सुने सुनाए नहीं, वो रटने नहीं है, अपने सोमान तैयार करने हैं। जो हम खून पसीने से खुद की कमाई करते हैं उसका स्वाद अपना होता है, और जो दूसरों का दिया हुआ है ना, भले को गिफ्ट भी दे, उसका उतना मजा नहीं आता है, अंदर में फिर भी एक थोड़ा भार रहता है, तो गिफ्ट की चीज मिली है। लेकिन जो खुद कमाई करते हैं, बाबा कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े। अब बाबा ने ज्ञान तो दे दिया लेकिन उसको अपना बनाना है। तो मैं कौन सी आत्मा हूं, ऐसे नए सोमान तैयार करूं, ज्वालामुखी सोमान होने चाहिए जिनमें आग दिखाई दे बीच में। तो कौन से सोमान होने चाहिए ऐसे, मैं जागती ज्योत हूं, हाँ मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, और कोई नया सोमान बताओ। मैं निमित्त और निर्माण आत्मा हूं, जिसमें शक्ति हो थोड़ी, आग लग जाए अंदर में एकदम। हाँ, तो और लंबा सुमान करना है तो एक दो हम बता देते हैं। मैं परमात्म शक्तियों का सूर्य हूं, ये नया सुमान है। हम सुनते रहे मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, ताकत उसमें भी है, लेकिन जो हम खुद तैयार करेंगे उसमें थोड़ा अपनापन ज्यादा लगेगा। तो मैं परमात्म शक्तियों का धधकता हुआ सूर्य हूं, एक सुमान हो गया। ऐसे दूसरा, मैं परमात्म शक्तियों का ज्वालामुखी हूं, मैं परमात्म शक्तियों की ज्वाला देवी हूं। और वो महसूस करना है, यहां यहां सूर्य जगमगा रहा है, सूर्य के आगे कोई ठहर नहीं सकता है। कल का स्लोगन क्या था? वो परसों था। अच्छा, ये कल था, तो परसों का क्या था? ये कल का ही था सर। हाँ, परसों का क्या था? इससे क्या होता है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है। जैसे सूर्य शब्द बोला तो हमको वो वरदान याद आ गया, स्लोगन याद आ गया। तो क्या स्लोगन था? सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो तो भाग्य परछाई की तरह पन्या पाएगा। तो हमेशा मैं परमात्म शक्तियों का जगमगाता हुआ धधकता हुआ सूर्य हूं। देखना है, आत्मा जैसे सूर्य की तरह चमक रही है। हमने एक नया संकल्प दे दिया, वो सूर्य की सारी एनर्जी उसको जागृत रखेगी, ताकत देगी, क्योंकि रोटी के ऊपर घी लगा दिया ना हमने, है तो सुमान ही है लेकिन उसके ऊपर हमने घी लगा दिया। तो नए नए सुमान, मैं परमात्म शक्तियों की ज्वाला देवी हूं। ज्वाला देवी कहां पर है? किसने देखा ज्वाला देवी को? हाँ, इधर ही तो है। तो ज्वाला देवी वहां प्राकृतिक गैसें हमेशा जलती रहती हैं। तो हमारा जो लौकिक बड़ा भाई था, जो उन्होंने हमको ज्ञान में लाए, तो वो बहुत भक्ति करते थे। तो वहां सब बहुत भक्ति पाठ पूजा किया, मंदिरों से विश्वास उठने लगा। तो लास्ट में वो ज्वाला देवी मंदिर में गए, हिमाचल प्रदेश में, नजदीकी है वहां। तो वहां उसने कहा, अगर माता जी आप सच्ची होंगी तो ये ज्योत बुझने नहीं चाहिए। और उसने जाके पुजारी के सामने जाके हाथ मारा और ज्योत बुझा दी, बुझ गई वो। वहां से उसका विश्वास उठ गया, क्योंकि वो तो प्राकृतिक है ना। तो वहां बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। तो जागती ज्योत तो वास्तव में हम है, वो तो सारा प्राकृतिक यादगार बनी हुई है। तो ये ज्योत कभी बुझनी नहीं चाहिए। तो पहली अग्नि ज्ञान की अग्नि हमेशा प्रज्वलित रखनी है। इतना विस्तार है कि एक दिन ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित करके रखो, बुद्धि को दौड़ाना है। आज मुरली में क्या था, या सवेरे कहां क्या सुना था, कल क्या सुना था, पिछली क्लास में क्या सुना था, पिछली क्लास में क्या सुना, अभी दीदी सुना के गए। साक्षी दृष्टा, डिटैच रहना है, एकदम डिटैच, ट्रस्टी होके संभालना है। तो सुननी सब की और उसको ना याद करना, बुद्धि को, ज्ञान को रिकॉल करना बार बार। बाबा कहते ना जिन की तरह, तो बुद्धि को जिन की तरह उसको काम दे देना है, नहीं तो हमारी बुद्धि हमको ही खा के चली जाती है। हमारा दूसरा कोई शत्रु नहीं है, हम स्वयं ही स्वयं के शत्रु हैं। स्वयं ही हमने अपने कमजोर संस्कारों को पकड़ के रखा हुआ है। बाबा रोज उनको छुड़ाने के लिए आग प्रज्वलित करते हैं, लेकिन हम मुरली के बाहर निकलते सारा पानी डाल के ठंडा कर देते हैं उसको। वहां की वहां रही, वहीं पल्ला झाड़ के आगे, वहीं से चालू कर देना है। थोड़े शब्द भी बोले हमारे हाथ में रहे, तुम्हें ढिंडोरा पिटवाना है, कौन सा? बाप आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने के लिए, राजयोग की स्थापना, राजयोग से स्वर्ग की स्थापना करने के लिए। तो पहली अग्नि ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित रखनी है और उसमें नए नए सुमान निकालने हैं। मैं परमात्म शक्तियों ही की चैतन्य मूर्ति हूं, निरंतर जैसे किरणें यहां से निकल रही हैं, या मैं मूर्ति हूं तो मेरे हाथ से वरदान निकल रहे हैं, रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं। प्रैक्टिकल में अनुभूति करनी है, देवताई पद की अनुभूति अब इस बॉडी में करनी है, संस्कार अभी ग्रहण करने हैं। आया था ना दैवी संस्कार ग्रहण करो, प्रश्न के उत्तर की लास्ट लाइन और मुरली की लास्ट लाइन भी थी। बाप कहते हैं तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए, अब तुमको घर वापस चलना है, दे बांध छोड़ डैश बनो, अशरीरी बनो और दैवी गुण धारण करो। अब इतना भी हम याद कर लें तो सारे दिन में चिंतन का काम मिल गया। अब देह भान छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, क्योंकि देह चिपका हुआ है, आत्मा और शरीर एकदम चिपके गए हुए हैं। जैसे शरीर में आत्मा नहीं घुसी है, ये जो शरीर है ना, ये आत्मा के में घुस गया हुआ अंदर ही, इतनी अंदर गहरी स्मृतियां चल गई हैं, जन्म जन्म की स्मृतियां। अब उसको निकालना कोई साधारण काम का नहीं है, साधारण काम नहीं है। इसलिए बाबा के क्यों कहते हैं बार बार घड़ी घड़ी मुझे याद करो, आज के मूल्य में था घड़ी घड़ी याद करो। बड़ी गहरी स्मृतियां हैं, पता नहीं कौन से जन्म की, कौन से संस्कार, कौन सी स्मृतियां, कौन से संबंध अंदर में घुसे हुए हैं। असंख्य मनुष्य हमारे अंदर हैं, असंख्य आकृतियां अंदर में घुसी पड़ी हैं, वो ही हमको तंग करती रहती हैं। तो ज्ञान की अग्नि हमेशा प्रज्वलित कर रखनी है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, मुरली एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आएगी। कितनी बार पढ़ने समझ आएगी, 8-10 दिन पहले मुरली में था, 5-6 बार पढ़ने समझ में आएगी। एक बार नहीं, बार बार पढ़ना है, क्योंकि साधारण पढ़ाई नहीं है। पढ़ाने वाला कौन है, स्वयं भगवान है, क्योंकि हमको संसार वाले नहीं पढ़ा पाएंगे, इतने हम बिगड़े हुए हैं, इसलिए अंत में भगवान को आना पड़ता है। इतनी ताकत है हम आत्माओं में, संसार की आत्माओं से हम कंट्रोल नहीं हुए, इसलिए अंत में भगवान को आना पड़ता है संगम पर। इतनी शक्ति है हम सबके अंदर में, हम अपनी शक्ति को पहचानते नहीं है। बाबा ने हमारी शक्ति को पहचाना, तभी तो उसने हमारा हाथ पकड़ा आगे, नहीं तो किसी को उठा के ले आते। कोई लोग ब्रह्मा बाबा के टाइम में आके बाबा से कहते थे, बाबा आप ये पवित्रता की बात छोड़ दो, यहां ढेर भीड़ लग जाएगी। बाबा ने क्या कहा था, मुझे भेड़ बकरे नहीं चाहिए, मुझे कौन चाहिए, शेर शेरनिया चाहिए। तो हम कौन है, शेर शेरनिया है। तो शेर शेरनिया तो जानवर होते हैं, शेर का बच्चा कैसा होता है और कुत्ते का बच्चा और भगवान के बच्चे, तो हम कौन है फिर, तो भगवान बन गए, बात खत्म हो गई। तो भगवान के बच्चे हैं, जो उसके संस्कार है वो हम सबके अंदर हैं। केवल स्मृति दिलाई है तुम मास्टर हो। कुछ दिन पहले मुरली में था, तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है, तुम्हें मूल वतन स्थूल वतन सूक्ष्म वतन की सारी नॉलेज है, तुम डैश डैश ठहरे। मास्टर भगवान बोल, मास्टर भगवान ठहरे, कितनी बड़ी बात बोल दी बाबा ने। फिर उसके कुछ दिन बाद था, तुम अभी अपनी तकदीर जगाने आए हो, तुम हो भारत की तकदीर, कितनी बड़ी बात है। माने मैं भारत की तकदीर हूं, अर्थात विश्व की तकदीर हूं, मैं अपनी तकदीर को बना रहा हूं, अर्थात पूरे संसार की तकदीर बन रही है। मैं जो संकल्प कर रहा हूं, उस संकल्प की एनर्जी पूरे संसार की आत्माओं को जा रही है, कितनी बड़ी बात है ये। इसलिए क्या कहते हैं, ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि का निर्माण किया। तो सबसे बड़ी सेवा कौन सी है, मनसा सेवा, संकल्पों की सेवा। इस मौके द्वारा कितनों को ज्ञान देंगे हम, लेकिन एक संकल्प अगर हमारा, हमने अपने आप अपनी शक्ति को पहचान लिया, पूरा फेथ कर लिया, वो संकल्प सारे संसार को प्रभावित करेगा, आत्मा में आग लगा देगा, अंदर में अपने आप खींची चली जाएगी। और ये प्रैक्टिकल में दादियों के जीवन में अनुभव सुनते थे। जानकी दादी जी लंदन में गए थे पढ़ना, उनको तो इतना अंग्रेजी तो आती नहीं थी, क्या किया वहां जाके, केवल साधना की। और पहली आत्मा कौन सी निकली थी वहां, डेनिस वैन, एकदम चैन स्मोकर, पत्रकार बीबीसी की थी, एक सिगरेट फेंकी दूसरी लगाती थी, इतनी चैन स्मोकर थी। लेकिन जैसे दादी योग में बैठी थी वहां, वहां से वो गुजर रही थी, उसको खिंचावट हुई उधर। फिर जयंती बहन ने कोर्स कराया, तो उधर जयंती दीदी कोर्स करा रहे थे और जानकी दादी जी योग कर रहे थे, पूरे वाइब्रेशन जा रहे थे, उनको स्पष्ट अनुभूति हो रही थी डेनिस दीदी को कि कुछ तो इधर से शक्ति आ रही है। तो हम घर में जहां भी बैठे हैं, हमको ये नहीं सोचना हम किसी गांव में हैं, किसी मोहल्ले में हैं, किसी शहर में बैठे हैं, नहीं, सारे संसार की नजरें बाबा कहते तुम बच्चों के ऊपर, तुम स्टेज के ऊपर हो, जो स्टेज के ऊपर होता है उसके ऊपर सबकी नजर रहती है। तो हमारा एक एक संकल्प बहुत कीमती, बहुत अमूल्य है। हम कहीं ना कहीं अपने आप को भूल जाते हैं, बेहोशी की अवस्था में चले जाते हैं। तो स्वयं की स्मृतियों को ताजा करके रखना, मैं कौन हूं, थोड़ा जगा के रखना है अपने आप को, कौन हूं। बाबा क्या करते थे, चुटकी मारते थे अपने आप को, अर्थात स्मृति आए, बेहोशी की अवस्था में चले जाए, हमेशा मैं कौन हूं। इसलिए बताया साधारण सोमानी, शक्तिशाली सोमान हमारे पास में होने चाहिए। मैं वो आत्मा हूं जिसके ऊपर स्वयं की रोज भगवान की दृष्टि पड़ती है। सबसे पहले भगवान की दृष्टि मेरे पर पड़ती है क्योंकि उसको मेरे ऊपर फेथ है। यही आत्मा संसार को पावन बनाने के लिए पर्याप्त है। हम सब वही आत्मा है। बाबा क्या कहते, तुम संसार के क्या हो, आधार मूर्त उद्धार मूर्त। तो केवल लिखने तक की थोड़ा सीमित है, लिखना ही नहीं है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, वो भी ठीक है, अब कुछ नवीनता चाहिए उसमें, ताकतवर नहीं है उसमें। शक्तिशाली स्थिति बनाने के लिए कुछ शक्तिशाली चिंतन चाहिए। जैसे बीमारी होती है क्रॉनिक, तो इंजेक्शन भी थोड़ा हैवी डोज लगाना पड़ता है। तो आत्मा कितने बीमारियों से ग्रसित हो चुकी है, अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ, अंधकार छाया हुआ अंदर। इसलिए पहली अग्नि ज्ञान की अग्नि हमेशा जला के रखनी है अपने अपने स्तर पर, वो मशाल हमेशा जलती रहे, एक सेकंड भी उससे अलग नहीं होना, जुदा नहीं होना। इसलिए बाबा अनेक युक्तियां बताती है, कभी बाप के संबंध में याद करो, कभी टीचर के, कभी सतगुरु के संबंध में आएगी, कभी साजन के संबंध में। हम सभी उसकी कौन है, सजनी है, सीताएं हैं। काली बोला था ना मुरली में, आज भी था, आज नहीं था, तो आज कौन है हम, आज ज्वाला देवी है। तो हम भगवान की सजनियां हैं, कितनी बड़ी बात है। माना हम भगवान हमारा पति है, भाइयों का पति है कि नहीं है, पतियों का पति है वो। तो को उसको बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे पति की बुद्धि का ताला खोल दो। ये संकल्प भी नहीं करना हमको घर में सारे ज्ञान में चल पड़े, जरूरत नहीं है। जो जैसा उसको पहले एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, जबरदस्ती नहीं ज्ञान सुनाना किसी को भी। ज्ञान साधारण थोड़े नहीं, ऐसे किसी को भी दे दें हम, अपने आप आए, हमारा जीवन चलता फिरता एक प्रयोगशाला बन जाए, लाइब्रेरी बन जाए। उनको आकर्षणों को इनको क्या मिला है, और ये प्रैक्टिकल में होता है। दादियों के जीवन में क्यों उनको देवियों का अनुभव होता था, चलते फिरते देवियां अनुभव होती थी। तो प्रैक्टिकल में हमारा जीवन चरित्र दूसरों को एक खुली किताब की तरह अनुभव हो, कि जीवन हो तो इनके जैसा हो। ब्रह्मा कुमारी अर्थ ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा, तब वो आएंगे इधर। उनको यह ना लगे इनके जीवन में बहुत त्याग करना पड़ता है, सवेरे उठना पड़ेगा, रोज मुरली सुनने जाना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, इनकी धारणाएं हैं। नहीं, धारणाएं हमारी सहज हो जाए, नेचुरल हो जाए। उनको पहले नहीं हम सुना दे सब कुछ ही, अपने आप उनको खिंचावट हो जाए। सामान्य दिनचर्या, एक बार हमको चीज का पता चल गया कि इस चीज हमको नुकसान हो रहा है, दोबारा उस तरफ क्यों जाएंगे। तो हमारा चलता फिरता जीवन ही उनको हमारी आंखें बोले, हमारा चेहरा उनको बताए। और ये अंतिम समय है, कब तक किसी को मुख से ज्ञान देंगे। तो हमें अपने जीवन को ऐसा आदर्श मूर्त बनाना है। दादियों के जीवन में से हमको क्यों आकर्षण होती थी, प्रैक्टिकल में था ना वो, तो हम भी तो उसी कुल के हैं ना, बहुत सारे कार्य हमको करने हैं। तो पहली अग्नि ज्ञान की अग्नि, दूसरी अग्नि कौन सी, योग अपने आप ही हो जाएगा, पवित्रता की अग्नि। हमारे ब्राह्मण जीवन का क्या है, ये फाउंडेशन है ये। और पवित्रता शक्तिशाली तब होगी जब पहला फाउंडेशन ज्ञान का है, क्योंकि ज्ञान कहां से आ रहा है, निराकारी दुनिया से आ रहा है। ये ज्ञान किसके लिए है, आत्मा के लिए ज्ञान है। जब आत्मा इस ज्ञान को एक्सेप्ट कर लेगी, भर लेगी, वो सारी जो जंजीरें बंध गई हैं वो अपने आप ही गिर जाएंगी। दे के भान, बाबा ने कहा ना, दे भान को छोड़ो अशरीरी बनो। तो दे भान की जो सूक्ष्म रस्सियां हैं, सूक्ष्म धागे हैं, वो अपने आप ही कट जाएंगे, आत्मा अपने आप ही उड़ान भरेगी। ज्ञान में ही पवित्रता समाई हुई है। एक ज्ञान कहां, कौन देने वाला है, पवित्रता का सागर ज्ञान दे, इसमें पवित्र वाइब्रेशन भरे हुए हैं। जितना समय हम अपने आप को ज्ञान योग में इन्वॉल्व रखते हैं, बिजी रखते हैं, तो जैसे हमारे में वो प्योरिटी की वाइब्रेशन भर रहे हैं सारे, अपने आप ही पुरानी कड़ियां जंजीरें टूटती जा रही हैं, जिसमें आत्मा बंधी है, ग्रसित है, पीड़ा से दुख है, जिसमें अंदर वेदनाओं से तड़फ रही थी, वो ज्ञान तलवार की तरह काम करेगा। आत्मा अपने आप ही पवित्रता की तरफ आकर्षित होगी, क्योंकि पवित्रता का अनुभव हमको बाबा के साथ में होगा। वो वो परम पवित्र सोल है। हमारी जब दूरियां कम होंगी तो ही हम उसका रस रसास्वादन ले सकते हैं, और जितना पवित्रता का बल ज्यादा है उतना सफलता ज्यादा है, उतना बुद्धि रूपी पात्र स्वच्छ होगा, ये ज्ञान रत्न अपने आप ही ठहरने लगेंगे। फिर बाबा ने कहा पवित्रता का बल ज्यादा है तो वाणी में जोर भरा होगा। किसी को हम एकदम फेथफुली कह सकते हैं, निश्चय से कह सकते हैं, बुलंद आवाज से कह सकते हैं, नहीं तो हमको हिचकिचाना पड़ता है। फिर अगर हमने स्वयं जिस चीज का अनुभव कर लिया तो दूसरों को अपने अनुभव के आधार से, अथॉरिटी के आधार से कह सकते हैं, तब सामने वाला भी उस चीज को सहर्ष स्वीकार कर लेगा। तो प्योरिटी हमारी कहां कहां, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क और कहां तन मन धन, जहां भी है, जहां भी हम रहते हैं, हमारा दृष्टिकोण बहुत हाई लेवल, हायर कॉन्शियसनेस का होना चाहिए। जिसको भी हम देख रहे हैं, भले कोई ज्ञान में है या नहीं है, सबको पवित्र आत्मा के रूप में देखना है, क्योंकि आत्मा जब ऊपर है तो वो तो संपूर्ण पवित्र है। वो तो इस संसार में हम आकर अपवित्र हो गए ना, लेकिन हमारा मूल वतन है, हमारा जो ओरिजिनल घर है वो तो क्या है, पावन धाम है, हम वहां से आए हैं। आत्मा जो ज्ञान में नहीं चल रही वो भी वहीं से आई है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, कोई फरिश्ता बना है नहीं बना है, सबको क्या देखो, फरिश्ता देखो। हमारा एटीट्यूड जो दृष्टिकोण है वो चेंज होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, सारा देह आकर्षित करेगा, देह के पदार्थ आकर्षित करेंगे, देह के संबंध आकर्षित करेंगे, विशेषताएं आकर्षित करेंगे। इसलिए पवित्रता का बल देखना है, जैसे पवित्रता का सागर सीधा समा गया है, जैसे वो पवित्रता का सागर पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी को लेकर आया और मुझ में समा गया, सारी पवित्रता उसने तो जन्म देते हमको पवित्रता दे दी है, वरदान दे दिया, कौन सा, पवित्र बनो, योगी बनो। तो हम संपूर्ण पवित्र आत्माएं हैं, जिस पवित्रता से सारे संसार को पावन बना रहे हैं। आज ही बाबा की मूल्य में तुम बाप को मदद करते हो, भगवान की मददगार है। मोहिनी दीदी न्यूयॉर्क वाले, किसी ने उनको पूछा कि आप लोग क्या काम करते हो, बोला हम भगवान को मदद करते हैं। कितनी बड़ी बात है, तो भगवान के कार्य में मददगार है, किसी मनुष्य के कार्य में नहीं है। तो दूसरी अग्नि कौन सी, पवित्रता की अग्नि, वो तब होगी जब पहले योग की अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहेगी। पवित्रता के संबंधित नए सुमान तैयार करने, जैसे बताया ज्ञान से, ऐसे पवित्रता से संबंधित, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, पवित्रता मेरा निजी संस्कार है, मुझसे निरंतर पवित्रता के वाइब्रेशन चारों ओर फैल रहे हैं, ये संपूर्ण देह जैसे पवित्र हो गई है, अंग अंग में प्योरिटी के वाइब्रेशन भर गए हैं, मेरे वाणी में प्योरिटी के वाइब्रेशन भरे हुए हैं, मेरी नजरों में प्योरिटी के वाइब्रेशन भरे हुए हैं, जैसे संपूर्ण देह जैसे प्योरिटी से, प्योरिटी पूरे शरीर में जैसे नाच रही है, दौड़ रही है, जैसे बिजली का करंट दौड़ता है, ऐसे प्योरिटी पूरी देह में दौड़ रही है। नए तरीके से चिंतन करना है, जैसे आसमान में बिजली आकाश में चमकती है, ऐसे संपूर्ण प्योरिटी पूरे शरीर में चमक रही है, ऐसे सबकी देह में चमक रही है, स्वयं के प्रति भी नहीं, सबकी देह में जैसे प्योरिटी दौड़ रही है एकदम बिजली के करंट की तरह। क्योंकि हम सबके दायित्व बनता है, कर्तव्य है सबको पावन बनाना। बाबा ने कहा अंत में वो आत्मा आएंगी जो अपने शक्ति से नहीं चल पाएंगी, उनको हमको अपनी शक्ति से चलाना पड़ेगा। तो हमको सबको शक्ति देनी है। तो अभी हम थोड़ी सी एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, सब खड़े हो जाएंगे। केवल एक मिनट ही करेंगे, सभी अपना वरदानी हाथ ऐसे करेंगे। मैं शीतला देवी वरदानी मूर्त आत्मा हूं, ये सोमान में स्थित रहेंगे। बोलने की जरूरत नहीं है, महसूस करो, रियलाइज करो कि मैं मंदिर में वही देवी हूं जो जिसकी पूजा पूरा संसार कर रहा है, भक्त लोग असंख्य भक्तों के बीच सामने खड़ी है। मैं शीतला देवी हूं, वरदानी मूर्त हूं और संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं, निरंतर मुझ आत्मा से प्योरिटी के वाइब्रेशन बहुत फास्ट गति से सारे संसार में फैल रहे हैं। मेरी पांचों उंगलियों से, मेरे पूरे शरीर से पवित्रता के वाइब्रेशन चारों ओर फैल रहे हैं। मैं परम पवित्र शीतला देवी हूं, मेरे अंग अंग में प्योरिटी के वाइब्रेशन समाये हुए हैं, मैं सारे संसार को पवित्रता के वाइब्रेशन दे रही हूं, मैं परम पवित्र देवी हूं। अभी ऐसे जहां खड़े हैं वहीं तीन चक्कर लगाएंगे, सारे संसार को सकाश दो पवित्रता के, क्लॉकवाइज चक्कर लगाएंगे, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी चक्कर लगाती है ऐसे चक्कर लगाओ। देवियां चक्कर लगा रही हैं, सारे संसार को पवित्रता का सकाश दे रही हैं। ओम शांति। बैठ जाएंगे। वो सारी प्रैक्टिकल में रिहर्सल अभी करनी है, जो देवता है देवियां मंदिरों में है, घर में ऐसे कमरा बंद और देवी खड़ी होगी साक्षात्कार, और बाहर सबको वरदान दे रही, और घर में कोई आ गया तो खिड़की खोल के देखेगा ये माता जी क्या कर रहे हैं इधर, ये पापा जी को क्या हो गया आज। अगर सत्य स्वरूप में स्थित होंगे तो उनको साक्षात्कार हो जाएगा। स्वीकार करना है, मैं वही इष्ट देवी हूं, मैं वही इष्ट देव हूं, वही हनुमान हूं, वही गणेश हूं। प्रैक्टिकल में उसकी प्रैक्टिस करनी है। ब्रह्मा बाबा कैसे प्रैक्टिस करते थे, हिस्ट्री ऑल बंद करके मिचनु, हाँ, तो वो सारा एक्सपीरियंस अभी करना है, अभी देवी संस्कार अभी वरने हैं। आगे जाके थोड़ा हमको पता होगा मैं कौन सी देवी हूं कौन सा देवता हूं, अभी हम सबको देवी देवता दिखाई दीजिए, तभी सबके प्रति वो वसुदेव कुटुंबकों की भावना रहेगी, तभी सब अच्छे लगेंगे, नहीं तो कोई अच्छा नहीं लगने वाला है, क्योंकि हमने खुद ही अपने अंदर बुराइयां भर के रखी हैं, अपने को बदला नहीं है, अपने में देवी संस्कारों का हमने अपना समाहित नहीं किया उनको, तो दूसरे कैसे लगेंगे। तो स्वयं को देखना, मैं संपूर्ण देवता हूं देवी हूं। प्रैक्टिकल में मेरी दृष्टि बदलेगी, मेरी वृत्ति बदलेगी, तो सब सब हमको वैसे ही दिखाई देंगे, नहीं तो सारी कर्मेंद्रियां सारा दिन धोखा देती रहेंगी, खुद ही दुखी होते रहेंगे, फिर बोलेंगे छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ, बाबा कहते छोड़े तो छूटे, वो तो छुड़ाने आया, कब से छुड़ा रहा है वो तो, लेकिन खुद ही नहीं छोड़े, गंगाराम तोते की जगह रट लगा रखी है। तो हमको तोता नहीं बनना है, कबूतर नहीं बनना है, क्या बनना है, हंस बनना है, और एक और था कठपुतली, दादी कहती थी ना जैसे बाबा ने चाहे वैसे चलने हैं। तो प्रैक्टिकल में हमको अनुभूति करनी है। तो दूसरी अग्नि पवित्रता के नए नए सुमान तैयार करने हैं। तीसरी अग्नि है प्रेम की अग्नि। प्यार सबसे बड़ी शक्ति है, प्यार सबसे बड़ा हथियार है। किसी का अगर दिल जीतना हो तो उसके लिए क्या कहा जाता है, उसका रास्ता पेट से जाता है दिल तक, किसी को खिलाओ पिलाओ प्रेम से। तो बाबा को भी खिलाना पिलाना है, क्या अच्छा अच्छा भोग बना के, लेकिन बाबा तो खाता नहीं है, अच्छे अच्छे संकल्पों का भोग। अव्यक्त वाणी में है, तुम्हारे संकल्प ऐसे होने चाहिए कि तुम संकल्पों का भोग भगवान को लगा सको। दूसरा भोग वाले हम अच्छा बना रहे हैं लेकिन अंदर से संकल्प हमारे खराब चल रहे हैं, ये भाई ऐसा है फलाना ऐसा है ढिमका ऐसे का, भोग कैसे स्वीकार करेगा बाबा। बाबा के बच्चे के प्रति मैं खराब सोच रहा हूं और इस तरह मैं भोग लगा रहा हूं, कहां तक कितना पहुंचेगा वो। अपने संकल्पों का भोग लगाना है, वो संकल्पों में ताकत भर जाएगी। वैसे तो बाबा कहते हैं मैं तो खाता पीता नहीं, मुझे खट्टे मीठे का अनुभव नहीं होता है ना। और अच्छा, और किसको नहीं होता खट्टे मीठे का अनुभव, एक तो बाबा को नहीं होता, दूसरा किसको नहीं होता है, आत्मा को तो होता है ना, खाती पीती तो पता तो चलता है ना। दूसरा होता है जिसको कोरोना हो जाता है उसको नहीं पता चलता जीभ में कौन सा टेस्ट है, अनुभव तो किया था ना उसमें। अगर घर में बोलते थे कि मेरा जीभ में स्वाद नहीं आ रहा तो घर वाले टेंशन में जाते थे कि इसको कोरोना तो नहीं हो गया कहीं। तो तीसरी अग्नि प्रेम, प्यार को बढ़ाना है। बाबा से प्यार अर्थात उसकी मुरली से प्यार, बाबा से प्यार उसके यज्ञ से प्यार, बाबा से प्यार अर्थात उसके परिवार से प्यार, बाबा से प्यार उसकी सेवा से परिवार, बाबा से प्यार अर्थात हर बच्चे से परिवार प्यार, छोटी छोटी चीजों से प्यार, इकोनॉमी से, चाहे घर में लौकिक में रहते हैं उसको भी बाबा का घर ही समझना है। बानी ऐसे घर में बैठे तो घर में भी कुछ भी वेस्ट करते रहे, घर को भी सेवा स्थान समझना है, भगवान का दिया हुआ है जैसे आश्रय स्थल है, ये उसकी नियामत है कृपा हमारे ऊपर जो उसने हमको रहने के लिए दिया हुआ है। अगर हम कंपैरिजन कर संसार की आत्माओं का क्या हशर है जिनको मांगने से भी दो रोटी नसीब नहीं होती है। बाबा ने कहा तुम बच्चों को तो अंत तक मैं दाल रोटी खिलाऊंगा खिलाऊंगा, और जितना ज्ञान बुद्धि में जाए उतना दाल रोटी की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर ये हमको पेट की ज्यादा भूख लगती है उसका अर्थ है कि ज्ञान की कमी। जिसको ज्यादा खुशी होती है उसको भूख भी कम लगती है। इसलिए हमारा बॉडी भी एक्यूरेट होनी चाहिए, हमारी बॉडी भी ज्ञान सुनाती है। हमारे शरीर से ही पता चल जाता है कितना ज्ञान हमारे कर्मेंद्र में समाया हुआ है। तो तीसरी अग्नि प्यार की आग लगानी है। प्रेमी आपस में संसार में प्रेम करते हैं तो घर में कितना भी विरोध होता है, कितना लोहा ले लेते हैं, पंगा ले लेते हैं, यहां तक कि हत्या भी कर लेते हैं। ऐसे माउंट आबू में बहुत सारे केस हुए, दोनों युगल प्रेमी घर से दौड़ के आ गए, पेड़ से फंदा लगा के दोनों इकट्ठे ही मर गए। ऐसे कई सारे केस होते रहते। अरे हमको तो भगवान मिला हुआ है, हम तो उसकी प्रेमिकाएं हैं, उसको रोज खत लिखना है, मैं आपकी सजनी हूं, आप मुझे कितना प्यार करते हो, कितने सुंदर सलोने साजन हो, आप तो कुछ मेरे से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते हो, मुझसे कितना प्यार करते हो। याद क्या, ये तो याद है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, उसको सहज करना बिल्कुल। जो संसार में हमने किया वही तो करना है, लेकिन उसमें अलौकिकता भर गई। पत्र लिखो साजन को, मैं आपकी सजनी मजलिस पार्क दिल्ली से बोल रही हूं, आप मुझे कितना, भाई टाइम भी तो पास करना ना थोड़ा, बाबा को लंबा पत्र लिखना, बाबा बोले 2 घंटे याद, अब दीदी ने बैठा दिया 2 घंटे याद करो, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो मैं आपकी सजनी मजलिस पार्क दिल्ली से बोल रही हूँ, या दूसरा सेंटर नेपाल से बोल रही हूँ, राम रोल आ गयो, हाँ ये नेपाली में बोलते अच्छा लगा इसलिए पूछ रहे। तो मैं सजनी आपकी, फिर बाबा भी उधर से लिखेगा, हाँ सजनी तो तुम बहुत अच्छी हो, बादशाह बहुत चलाती हो। तो बाबा को पत्र लिखना। अच्छा एक कहां प्रेम की आग, तीसरी सी आग, चौथी आग त्याग की अग्नि। जो चीज त्याग दी व्यर्थ का बिल्कुल त्याग। ये जो डिजिटल गृहस्थी है हम सबके हाथ में है, इस गृहस्थी में गए तो ये ब्लैक होल की तरह सारा हमारे की कमाई चट कर देगी। इसलिए छोटी छोटी चीजों का त्याग, बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है त्याग कौन कौन सा करना है। चौथी वैराग्य की आग, वैराग्य की अग्नि हमेशा प्रज्वलित रखनी है। जो चीजें हमारे पुरुषार्थ में बाधक हैं छोड़ देने, उनको संसार में रखा क्या है, इस देह में भी क्या रखा है, देह के सौंदर्य, देह को सजाना संवारना, देह में जे का ज्यादा फैशन करना, सिंपल जीवन। बाबा कहते सादा जीवन उच्च विचार होना चाहिए। फैशन करना है तो ज्ञान का फैशन करना है, ज्ञान का ब्यूटी पार्लर खोलना घर में, ज्ञान के गुणों से श्रृंगारना अपने आप को। कितने ज्ञान गुण शक्तियां बाबा ने दिए, हमेशा ज्ञान का मस्तक में तिलक लगा रहे, चिंदी लगी रहे, कुंडल कौन से, एक बाबा से सुना हुआ सुनाऊ सुन, और नथनी एक बाप दूसरा ना कोई, और लिपस्टिक मुस्कान की रूहानी मुस्कान की लिपस्टिक, और पाउडर अब ऐसे अपना तैयार कर लेना श्रृंगार आप, तो 16 श्रृंगार, हाँ 100 भी कर सकते हैं श्रृंगार। तो वैराग्य की आग, त्याग की अग्नि, और फिर और कौन सी अग्नि है, कितनी होगी अग्नि, ये पहली ज्ञान की अग्नि, पवित्रता की अग्नि, प्रेम की अग्नि, त्याग की अग्नि, वैराग्य की अग्नि, लगन की अग्नि। लगन कम नहीं होनी चाहिए कभी भी, भले दिल नहीं लग रहा, योग नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं आनी, आके बैठ जाओ, बाबा आपको कह देना बाबा मैं तो योग करने आई हूं, अब आपको सामने बैठी हूं, योग लगे नहीं लगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हूं जैसी हूं आपकी हूं, जो हूं जैसा हूं आपका हूं। दो माताएं थी आपस में, तो एक माता दूसरी माता को पूछती है बाबा को चार्ट कैसे देना होता है, तो माता बोलती बड़ा सिंपल है, बाबा के कमरे में बैठो, आत्मा निकाल के रख दो, बाबा ये रही आत्मा, जो देखना देख लो, सिंपल काम है। बाबा को भोले वाले बच्चे चाहिए, वही उसको पसंद है। इसको ज्ञान बड़ा सिंपल तरीके से याद करना है। और एक है सोमान की अग्नि, 7 हो गई, तो ऐसे तो कितने भी कर सकते, हो गई ना 7, और भी बहुत सारी अग्नि हो सकती है, ज्ञान त्याग वैराग्य लगन नगन, कुछ भी अग्नि बना लो। ज्ञान के साथ खेलना है, बच्चे कैसे खिलौने से खेलते हैं, तो ऐसे ज्ञान के खिलौने तैयार करने हैं। कुछ नवीनता चाहिए जीवन में, रोज उसी डर्रे पर चल रहे हैं ऐसा नहीं, कुछ नवीनता चाहिए। ज्ञान की योग की एक्टिविटी करो, जैसे एक कराई बीच में, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी है, कुछ भी कर सकते हो। तो ये जो टाइम तो हो गया, तो हमारा जो जीवन है ब्राह्मण जीवन सबसे बेस्ट लाइफ है, ये स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। स्टूडेंट माना हर पल हमको सीखना है, सीखने की अगर हमको अंतर में मानसिकता रहती है तो जीवन में उमंग उत्साह बना रहेगा। जैसे हम मान लेते हैं कि आज तो हमने मुरलियां सुन ली, रोज रोज वही मुरलियां, हमारा पुरुषार्थ वही रुक जाएगा। हर मुरली में नवीनता होती है, लेकिन हमारा दृष्टिकोण वैसा होना चाहिए, नए तरीके से हमको सीखना है। हर चीज में नवीनता है, ज्ञान में नवीनता है, योग में नवीनता है, धारणाओं में नवीनता है, सेवा में नवीनता है, संबंध संपर्क में नवीनता है, बोलचाल में नवीनता है। कंपैरिजन करना है, जो बाबा की वाणी है उसी अनुकूल हमारे मुख से भी वैसे बोल निकलते हैं। अगर बोल निकलते हैं तो जो पुरानी छोटी मोटी बातें हैं, फालतू है या पागल, जो छोटे छोटे शब्द निकल जाते हैं, ये नहीं निकलने चाहिए। एक मुरली बाबा ने बोला, अगर किसी को बोलते ये तो फालतू ही है, ये भी जैसे तुम बच्चे श्राप दे देते हो, ये तो पागल है, ये भी श्राप दे देते हो। अब हमारे मुख से एक एक शब्द निकला हुआ वरदान के रूप में काम करता है। अगर हम हल्के में भी सोचते रहते, लाइट में ही सोच, माना एक कि मैंने तो मजाक में कह दिया, वो दूसरों को लग जाएगा। ये तो भक्ति के मार्ग में हमने प्रैक्टिकल में देखा हुआ, जो बहुत कट्टर भक्त होते हैं उनके मुख से निकले हुए वचन भी सत्य युद्ध हो जाते हैं। हम तो प्रैक्टिकल में भगवान के बच्चे हैं, स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम बाबा का, भगवान का प्रधानी हाथ हमारे सिर पर है, तुम्हारे एक एक बोल में ताकत है, सामर्थ्य भरा हुआ है, एक एक शब्द में अंदर में ताकत है बहुत सारी। तो ये साधारण जीवन नहीं है। तो आज से हमको सारी मुरली याद रहती है, पक्का? हाँ, कभी भी अपने अंदर हीन भावना नहीं भरनी, भले नहीं भी रहती है फिर भी सोचना याद रहती है, लेकिन प्रैक्टिस करनी, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना थोड़ी। ऐसा नहीं खाना रख दिया आगे खाना तो पड़ेगा, मुरली आगे रखी है पड़ी, हमने है नहीं तो याद ऐसे थोड़ी आ जाएगी। थोड़ा उसको पढ़ो, उससे प्यार करो, देखो उल्टी पलटी करके, ऐसे पढ़ने के बजाय पहले स्लोगन से पढ़ना चालू कर दो, मीठे बच्चे के बजाय फिर पीछे से शुरू करो, बीच वाले पेज से शुरू करो, कभी एक ही पैरा पढ़ो, कुछ लिखो, उसके ऊपर चिंतन करो, आपस में चर्चा करो। ओम शांति।
चाहे अब जब से तुमको जाना है,
दिल और नहीं कुछ चाहे अब जब से तुमको जाना है।
ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है।
बस
तू ही मेरा खजाना है।